दिन भर 28 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए प्रतिरोध दिवस का मिला जुला असर, विपक्ष बटा नजर आया
कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है हमारी जो पार्टी है। ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है।
मोहाली टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर शिकंजा कसा।
जयंत ने, अश्विन ने और मैंने, तीनों ने मिलके बात करके इनिंग बिल्डअप किया और अच्छा स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत के विपक्षी दलों ने आज देश भर में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वामपंथी दलों की ओर से की गई बंद की अपील का आंशिक असर ही दिखा। कांग्रेस ने कई शहरों में जन आक्रोश रैली निकाली। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में मार्च निकालकर विरोध जताया। वहीं केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी देश के कई हिस्सों में विपक्ष के प्रदर्शन के विरोध में रैली निकाली। सीरिया के एलेपो से मिली खबरों के मुताबिक सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेपो के बड़े हिस्से पर अधिकार हासिल कर लिया है। विद्रोहियों के असर वाले इलाके में सरकारी सेना का हमला जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा लगता है कि विद्रोहियों ने उत्तरी दिशा में स्थित आसपास के इलाके से भी अधिकार गंवा दिया है। संघर्ष की वजह से हजारों आम लोग कुर्द लड़ाकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में चले गए हैं। वहीं कई लोग सरकार के नियंत्रण वाले पश्चिमी एलेपो में चले गए हैं। चीन ने सिंगापुर के समक्ष औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत जलपोत में लदे सिंगापुर के सैन्य वाहनों को हांगकांग में जब्त किए जाने के मामले में है। चीन का मानना है कि इसका इस्तेमाल ताइवान में प्रशिक्षण के लिए किया जाना था। ताइवान में स्वायत्त सरकार है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गांग स्वांग ने कहा कि सिंगापुर चीन और ताइवान दोनों के साथ रिश्ते नहीं रख सकता। उन्होंने कहा, चीन ने इस मामले में सिंगापुर के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। सिंगापुर से कहा गया है कि वो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सरकार के कानूनों का पूरी तरह से पालन करे। जिन देशों के चीन के साथ राजनयिक रिश्ते हैं और जो सैन्य आदान प्रदान और साझेदारी समेत ताइवान क्षेत्र के साथ किसी भी तरह के आधिकारिक संपर्क में हैं, चीन की सरकार हमेशा उनसे विरोध जताती रही है। हम मांग करते हैं सिंगापुर सरकार चीन के सिद्धांत का पालन करेगी। ये थे गांग स्वांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश सीमा पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रवासी रोहिंग्या मुसलमानों से भरी 8 नावों को वापस कर दिया है। ये प्रवासी लोग म्यांमार में जारी हिंसा की वजह से बांग्लादेश का रुख कर रहे थे। म्यांमार के रखाइन प्रांत से बीते हफ्ते के दौरान हजारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश का रुख किया है। बांग्लादेश के दो प्रमुख विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि शरणार्थियों को आने दिया जाए, लेकिन सरकार अपनी नीति में बदलाव करने से इनकार कर चुकी है। जापान के अधिकारियों का कहना है कि फुकुशिमा में रेडियो एक्टिव पदार्थ की सफाई और परमाणु संयंत्र के करीब रहने वाले लोगों को मुआवजा देने की लागत दोगुनी हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने आज देश भर में प्रदर्शन किए। वाम दलों ने बंद का आह्वान किया तो कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने जन आक्रोश दिवस मनाया। जगह जगह रैलियां निकाली गईं और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंके गए। इस विरोध में विपक्ष बटा हुआ था और कुछ पार्टियों ने इससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया। संसद में भी नोटबंदी के मुद्दे ने माहौल गर्म रखा और सरकार ने विपक्ष को सदन में अपना विरोध रखने की सलाह दी। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
देश में आज नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से बुलाया गया बंद था या जन आक्रोश दिवस, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी दावा कर रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की हड़ताल ने आम जीवन को ठप्प कर दिया। पर कांग्रेस ने सिर्फ राजभवन के बाहर धरना दिया। वाम मोर्चे ने कोलकाता में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली तो वहीं ममता बनर्जी ने इस बंद का विरोध किया और इसके जरिए आम कामगार को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने जब नोटबंदी के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने की मंशा जाहिर की थी तो बात 28 नवंबर को भारत बंद की थी, लेकिन वाम दलों के वर्चस्व वाले कुछ इलाकों को छोड़ बाकी जगह इसने जन आक्रोश दिवस का ही रूप लिया। यहां तक कि संसद में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि वो पहले से परेशान जनता को और परेशान नहीं करना चाहते।
सर, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब अपोजिशन की 18 पार्टीज की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हम जन आक्रोश दिवस आज मनाएंगे पूरे देश में। हमने भारत बंद के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी।
पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 500 और 2000 के नोटों की नकल को प्रधानमंत्री मोदी के पुतले पर चिपकाकर उसे आग लगाई और बैंकों और एटीएम की लगातार लंबी कतारों की दुहाई दी। बिहार की तरह झारखंड में जुलूस निकाले गए। झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी बेकार की कवायद है। काला धन रखने वाले आज भी सुखी हैं और गरीब आदमी एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। पर जनता दल यूनाइटेड, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बहुजन समाज पार्टी समेत कई पार्टियों ने इस विरोध से दूर रहने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती:
कि हमारी पार्टी कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। हमारी जो पार्टी है तो ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है।
विपक्ष के इन सभी प्रयासों के लिए सरकार के पास एक जवाब था। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा,
सदनों में, पार्लियामेंट में बहस करने के लिए, इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए भारत सरकार सदैव तैयार है। आइए हाउस में आप बहस शुरू करिए।
संसद का ये सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री मोदी के आने की अपनी मांग पर अड़ा रहा है। इसके चलते आज भी राज्यसभा में कोई काम नहीं हो पाया। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इतना आश्वासन जरूर दिया कि जरूरत लगी तो ये मांग पूरी की जाएगी। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
मैंने फर्स्ट पोस्ट के संपादक अजय सिंह से संपर्क किया और पूछा कि आज के जमाने में आपकी नजर में बंद क्या विरोध का कारगर हथियार साबित हो सकता है?
देखिए, अगर जन आक्रोश होता और बंद सफल होता तब तो हमें लगता कि इसका कोई अर्थ है, लेकिन जन आक्रोश ना हो और आप जबरदस्ती चाहें कि जन आक्रोश आपके एक्शन से हो जाए तो फिर हमें लगता है कि वो एक अजीब सा एफर्ट है जिसका ना कोई राजनीतिक लाभ है और ना ही उससे कोई फायदा है। तो आप आक्रोश भी नहीं दिखा पाए और आप कुछ अपनी बातें कह रहे हैं जो लगातार कह रहे हैं और जिनका कोई असर नहीं होना है, तो हमें लग रहा है कि इसका कोई बहुत अर्थ तो नहीं है।
ये बताएं, ये जो पूरा मुद्दा है इस पर विपक्ष जिस तरह से विभाजित दिखाई दिया उसकी वजह से ये डाइल्यूशन हुआ? कांग्रेस ने कहा कि वो बंद में भाग नहीं लेगी, जनता दल यू ने अपना पल्ला झाड़ लिया बिहार में कहते हुए कि वो मोदी के साथ हैं इन पर, और बची तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, तो कुल मिलाकर जो एक रास्ता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी विपक्ष में?
नहीं, अगर कुल मिलाकर आप देखें तो विपक्ष एक विश्वसनीय सामने वो रख रहा हो, यानी कोई डायलॉग या कोई इस तरह की बातें रख रहा हो जो कि लोगों में जिसका असर हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष एक अजीब से रूप में दिखाई दे रहा है जिसमें हठधर्मिता भी है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये निर्णय जो हुआ ना उससे आम आदमी को दिक्कतें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी अगर जाएगा तो उसको दिखाई दे रहा है कि दिक्कतें हुई हैं, लेकिन विपक्ष उन दिक्कतों को एक तरह से आर्टिकुलेट इनसे नहीं हो पा रहा है और ना ही लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष एक ऐसी जगह है जहां से उनकी बातें उठाई जा सकती हैं।
ये बताएं अजय, कोई भी आर्थिक फैसला सरकार लेती है, बड़ा आर्थिक फैसला इस तरह का, उसके पीछे एक सोच होती है एक पॉलिटिकल गेन की, अगर शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म गेन। मोदी ने क्या सोच कर
इतना बड़ा फैसला लिया?
देखिए, मेरी नजर में तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है। मुझे आजाद भारत का कोई फैसला, इवन आजाद भारत छोड़िए पहले का भी, कोई फैसला स्टेट का ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसका इतना वाइड स्प्रेड इफेक्ट हुआ हो, यानी आम आदमी से लेके, भिखारी से लेके और राजा तक। तो इस तरह का कोई, हमें नहीं याद है इंडियन हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट हो जो कि हुआ। जाहिर है कि अगर पीएम ने ये निर्णय लिया है तो उसका राजनीतिक लाभ तो सोचा ही होगा, राजनीतिक लाभ या हानि जो भी होगा, उनके दिमाग में कोई आर्थिक विचार भी होंगे। और हमें जो नजर आता है वो कहीं ना कहीं एक लोगों में, जो हमें, अगर आप हमसे पूछिए तो हमें लगता है कि उनके शायद दिमाग में भारत की एक ऐसी छवि है जिसमें डिसिप्लिन इनहेरेंट है। उन्होंने कई बार हमसे जो इंटरव्यू भी दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ को देखिए, कुंभ में इतने सारे लोग, पूरा ऑस्ट्रेलिया आता है और चुपचाप चला जाता है, वो किसी स्टेट के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है। तो वो एक बार भारत की जो इननेट स्ट्रेंथ है उसको दिखाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि इकोनॉमिकली जो इसका एडवांटेज होगा वो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए अच्छा होगा।
लेकिन आप नहीं समझते ये एक बड़ा जुआ था जो बहुत आसानी से बैकफायर भी हो सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये छोटा जुआ है ही नहीं, ये बहुत बड़ा जुआ है और इसमें बैकफायर के पूरे चांसेस हैं। और इसमें जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, जिस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, उसमें पूरे चांसेस हैं कि कोई भी राजनेता इस तरह का डिसीजन ले, इसका मतलब है कि उसमें रिस्क की एपेटाइट बहुत ज्यादा है। और इसमें हो सकता है कि इसमें आने वाले टाइम में क्या राजनीतिक असर होगा हमें भी नहीं मालूम है।
ये थे फर्स्ट पोस्ट के संपादक अजय सिंह।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
पंजाब की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल से भागे खालिस्तानी पृथकतावादी हरमिंदर सिंह मिंटू को 24 घंटों के अंदर ही पकड़ लिया गया है। बाकी भागे हुए कैदी अभी भी फरार हैं। मिंटू ने अपनी दाढ़ी और मूछें कटवा ली थी ताकि उनकी शक्ल पहले से फर्क दिखाई दे। उन्हें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया जहाँ से वो मुंबई जाने की कोशिश कर रहे थे। रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब की नाभा जेल से भागे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया है। इसकी पुष्टि दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद दीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। बताते चलें कि कल सुबह 10 के करीब पुलिस की वर्दी में आए हमलावरों की मदद से मिंटू सहित 5 अन्य गैंगस्टर जेल से फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी धरपकड़ के लिए देश के कई भागों में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। बताया जाता है कि मिंटू ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए अरविंद दीप का कहना था,
बाल ट्रिम कर चुका था अपनी बियर्ड और काफी आइडेंटिटी में इसके फर्क आ गया था, ट्रिम बियर्ड और ट्रिम मुस्टैशेस की वजह से उसको हटा दिया था। तो ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। इसका प्लान था यहाँ से मुंबई, दिल्ली से और मुंबई के बाद गोवा, और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। गोवा में इसके अच्छे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट थे, गोवा में ये 18 साल तक रहा है।
मिंटू के ऊपर 12 के करीब केस चल रहे हैं, जिसमें सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम राय पर जानलेवा हमला करना और एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट फेंकना शामिल है। 49 वर्षीय मिंटू जब 2014 में थाईलैंड से वापस आए तो उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से नाभा जेल में बंद थे। पंजाब में हुई जेल ब्रेक और मिंटू की गिरफ्तारी पर अन्य राजनीतिक पार्टियां, पंजाब के होम मिनिस्टर जो कि पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बीबीसी से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं,
मेरा ट्वीट तो ये है इसमें जी के पंजाब गवर्नमेंट को हम बहुत देर से कह रहे हैं कि पंजाब का सारा जो पुलिस सेटअप है वो बिगड़ चुका है, वहाँ बिल्कुल कंप्लीट डिसऑर्डर है, चेन ऑफ कमांड टूट चुका है। और पिछले 10 साल से ये जो पंजाब की एक बेहतरीन हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स होती वो एक प्राइवेट मिलिशिया बनकर रह गई है प्रेजेंट रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन का।
आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर गुरप्रीत घुग्गी भी प्रताप सिंह बाजवा की तरह पंजाब की कानून व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। उनका कहना था,
ਨਾਭਾ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾਭਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ 200 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਮੇ ਦੋ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮੋ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾ ਫੇਲੀਅਰ ਬਤਾਤੀ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਤਾਵਾਦੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ।
ਖਬਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਬੀਬੀਸੀ ਪਰ ਹੈ।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। सीरिया की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने पूर्वी एलेप्पो के सखूर और हैदरिया इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते विद्रोहियों के कब्जे वाला पूर्वी एलेप्पो अब दो टुकड़ों में बट गया है। उधर ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि पूर्वी एलेप्पो के नज़दीक के उत्तरी इलाके विद्रोहियों के हाथों से निकल गए हैं। بی بی سی संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
सीरिया के सरकारी टेलीविजन में पूर्वी एलेप्पो के दो महत्वपूर्ण इलाकों में सरकारी सेना के कब्जे की यह खबर प्रसारित हुई। न्यूज एंकर कह रही थी कि सहयोगी सेनाओं की मदद से हमारी सेनाएं एलेप्पो शहर के पूर्वी इलाकों में लगातार बढ़त बनाती जा रही हैं, और सेना ने सखूर और हैदरिया के महत्वपूर्ण इलाकों में पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन में प्रसारित समाचार। इस समाचार में यह भी कहा गया है कि सरकारी सेनाएं बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों को नाकाम करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। उधर ब्रिटेन में सीरिया के हालातों पर नजर रख रही सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि पिछले हफ्ते के आखिर में हुई जबरदस्त लड़ाई के बाद पूर्वी एलेप्पो के नजदीक के उत्तरी इलाके विद्रोहियों के हाथों से निकल गए हैं। उधर सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जैन इंग्लैंड ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो को दो टुकड़ों में बांट दिया है। ऐसा लगता है कि सरकारी सेनाएं और उनकी सहयोगी सेनाएं पूरी तरह से घिरे हुए एलेप्पो को पश्चिम और पूर्व दो जगहों में बांट रही हैं, जिससे तीसरा उत्तरी हिस्सा अब एक और छोटा घिरा हुआ इलाका है और दक्षिणी दो तिहाई हिस्सा भी घिर गया है। वहाँ एक खतरनाक युद्ध चल रहा है जिसका असर नागरिकों पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जैन इंग्लैंड के शब्द। इस बीच युद्ध के चलते हजारों आम नागरिकों के इस इलाके से भागने की भी खबरें आ रही हैं। उधर सरकारी मीडिया ने दिखाया है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग सरकार द्वारा संचालित हरे रंग की बसों में बैठकर सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाए जा रहे हैं। कुछ और भी तस्वीरें मीडिया में आई हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से भागकर लोग कुर्दों के कब्जे वाले एलेप्पो के शेख मकसूद इलाके में आ रहे हैं। सीरियाई संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता स्कॉट क्रेग ने कहा है कि उनके पास इस इलाके से कई नागरिकों के भागने की पुख्ता खबरें हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि रिपोर्टों में आ रही सैन्य बढ़त की इन खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर दें। हालांकि यह बात हम जानते हैं कि युद्धग्रस्त इलाकों से कई आम नागरिक भाग रहे हैं। मैं पुख्ता तौर पर आपको इनकी जो कम से कम तादाद बता सकता हूं, वह तकरीबन 780 परिवार हैं। इसलिए ये बेशक 2000 से ज्यादा लोग होंगे। UNHCR के प्रवक्ता स्कॉट क्रैक के शब्द। BBC से बात करते हुए क्रैग ने यह भी कहा है कि पूर्वी एलेप्पो में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को सहायता पहुंचाए जाने की जरूरत है, जिनमें से तकरीबन 1 लाख बच्चे हैं। क्रैग का कहना था कि इस इलाके में खाने की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीरियाई सेनाओं की ओर से आज भी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई बमबारी जारी है। इस साल सितंबर में सीरिया की सेना ने एलेप्पो शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए यह बड़ा अभियान छेड़ा था।
सीरिया की सेना ने पूर्वी एलेप्पो के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और सुमिरन प्रीत कौर।
आपकी राय आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। नमस्कार। और मेरे साथ हैं सुमिरन प्रीत कौर
जी। नमस्कार।
जी शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
बिल्कुल, और मैं एक महिला श्रोता की चिट्ठी के साथ शुरू करूंगी।
क्या बात,
हाथ से उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है। इनका नाम है
कार्ड पे।
जी गौहर अफशा, बिलारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से।
बहुत स्वागत है गौहर जी आपका।
जी ये कहती है कि जो 100 वुमेन सीरीज शुरू हुई है ये इनको बहुत अच्छी लगी है। वो कहती है कि मैं 11 साल से बीबीसी नियमित रूप से सुन रही हूँ और 100 वुमेन जो सीरीज है वो काफी सराहनीय है। साथ ही इंडिया बोल और रेहान फजल की जो विवेचना थी जो बेगम अख्तर पर थी वो उन्हें बहुत पसंद आई।
बहुत शुक्रिया गौहर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खत लिखा और हमें बताया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो आधी दुनिया की आवाज़ है वो सुनाई दे कार्यक्रमों में, और उसकी जो खुशियां हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनके जो सपने हैं वो सब हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे। आपका शुक्रिया खत लिखने के लिए, और उम्मीद है कि आप आगे भी हमें बताती रहेंगी कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं।
जी इन्हें दिव्य आर्या की जो रिपोर्ट थी वो काफी पसंद आई। और बिहार से नागेंद्र कुमार कुशवाहा लिखते हैं कि उन्हें भी जो 100 वुमेन सीरीज है और जो दिव्या आर्या का जो कार्यक्रम था वो भी बेहद अच्छा लगा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस कार्यक्रम का लेकिन उन्हें शीर्षक अच्छा नहीं लगा।
मुझे तो इनका पोस्ट कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने पीली
अलग अलग रंग
पीले रंग के पोस्ट कार्ड पर लाल हरी और नीली स्याही से बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में हमें ये पत्र लिखा है। और कार्यक्रम का शीर्षक तो एक ही हो सकता है और मुश्किल है कि वो सबको पसंद आ जाए। आपको क्यों नहीं पसंद आई आपने ये नहीं बताया, अगर आपने ये बताया होता तो शायद हम समझ पाते कि आपको क्यों नहीं पसंद आया शीर्षक।
जी और एक ऐसा साक्षात्कार है जो हाल ही में बहुत लोगों को पसंद आया और वो था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गर्मागर्म साक्षात्कार था, उसको सुन के नरेंद्र कुमार को बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र कुमार जो मीरठ उत्तर प्रदेश से हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि राजेश जोशी जी ने जो नोटबंदी पर जो बातचीत की वो भी उन्हें बेहद पसंद आई।
बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह से आपकी उम्मीदों को पूरा करते रहें।
जी और
ये भी एक पोस्ट कार्ड दिख रहा है आपके हाथ में।
बिल्कुल, ये आखिरी पोस्ट कार्ड है और ये लिखा है अशोक कुमार ठाकुर ने दरभंगा बिहार से, जो लिखते हैं कि दुनिया जहां में अमेरिका में अभी तक महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं चुनी गई, इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिली। अमेरिका के अलावा अन्य देशों में महिला राष्ट्रपति बनने में सफल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भी अमेरिका में भागीदारी बढ़ी है महिलाओं की, तो इन्हें ये बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा दुनिया जहां। साथ ही जो क्यूबा के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर जो रेहान फजल की विवेचना थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगी, और एक सजेशन, एक सुझाव भेजा है कि अगर नोटबंदी पर एक विवेचना हो जाए तो।
बिल्कुल अच्छा सुझाव है।
ये सुझाव हमें बलजिंदर सिंह ने भेजा है। ये जगह नहीं लिखी उन्होंने, कहां से,
ईमेल से भेजा है, इसलिए शायद उन्होंने जगह नहीं लिखा।
जी और अगली ईमेल जो लिखी है अर्जुन दान चारण ने बाड़मेर राजस्थान से, वो कहते हैं कि राजेश जोशी जी की जो मुलाकात थी, बातचीत थी ओमपुरी के साथ संडे दिनभर में, वो उनको बहुत पसंद आई। जो पूरी बातें थी और जिस तरह से उन्होंने सवाल रखे सामने वो उन्हें बहुत अच्छे लगे।
बहुत शुक्रिया आपका।
खैर अब एक छोटी सी सुझाव की बारी और छोटी सी शिकायत की बारी। ये लिखा है एहसान असगर ने, ईमेल भेजा है मलकापुर महाराष्ट्र से।
ये भी हमारे पुराने श्रोता हैं, अक्सर हमें ईमेल भेजते हैं। जी बताइए क्या कहते हैं।
तो इनकी शिकायत है कि 26 नवंबर को जो पूरा दिन भर था वो फिदेल कास्त्रो को समर्पित था, पूरा घटना चक्र में भी उस पर बात हुई। ठीक है अगर दिन भर में आप एक बार इसके बारे में बात कर लें, पर पूरा का पूरा कार्यक्रम ही उस पर।
फिदेल कास्त्रो एक ऐसी शख्सियत है जो 90 साल तक उनकी उम्र थी, उन्होंने उनके सामने अमेरिका के 11 राष्ट्रपति बदले, दुनिया भर में एक अलग तरह की शख्सियत थे, जो अमेरिका के खिलाफ जो लोग लंबे समय तक खड़े रहे उनमें से थे, और उसका बहुत एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और हर दृष्टि से बहुत मतलब था कि जब वो इस दुनिया से चले गए तो एक बार ये जानने समझने की कोशिश की जाए कि उनका योगदान क्या था, उनकी विरासत क्या थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। इसमें काफ़ी दिलचस्पी हमें लगा कि लोगों की होगी, और ऊपर से ये भी कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक हैं, हमें ये महसूस होता है कि जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो हम बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हमने इसलिए उस पर ख़ास तवज्जो दी, ख़ास ध्यान दिया। और बहुत सारे श्रोता हमारे हैं जो ये ईमेल लिख रहे हैं कि उनको वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, लेकिन पसंद अपनी अपनी। आपकी बात हमने सुनी, आपका खत लिखने के लिए शुक्रिया।
जी, आपने कहा कि बहुत लोगों को पसंद आई थी ये विवेचना, तो भवानी शंकर वर्मा ने छत्तीसगढ़ से लिखा है कि उन्हें ये विवेचना बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि विवेचना उनके लिए एनसाइक्लोपीडिया तक का काम करती है।
बहुत शुक्रिया रेहान, बहुत मेहनत से विवेचना हमारे श्रोताओं के लिए तैयार करते हैं और अक्सर लोग उसकी तारीफ करते हैं और आपकी ये तारीफ हम रेहान फजल तक पहुंचा देंगे। और अब आपकी राय में आज बस इतना ही। अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk और पत्र लिखने के लिए पता वही पुराना है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। तो अनुमति दीजिए, नमस्कार।
मोहाली में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच पर भारत ने अपना शिकंजा कस दिया है। पहली पारी के आधार पर 134 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में अपने 4 विकेट केवल 78 रन पर खो दिए हैं। पारी की हार से बचने के लिए अभी भी उसे 56 रनों की जरूरत है। आदेश कुमार गुप्त।
मोहाली में आज पहले तो भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाया और उसके बाद भारत के गेंदबाजों ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते इंग्लैंड की दूसरी पारी में 4 विकेट झटक कर उसका हाल बेहाल कर दिया। स्टंप के समय इंग्लैंड का स्कोर केवल 78 रन था। सलामी बल्लेबाज जो रूट हालांकि अभी तक एक छोर थामे हुए हैं। पूरी 101 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 2 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए हैं। उनका साथ दे रहे हैं गैरेथ बैटी, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना बाकी है। कप्तान एलिस्टर कुक 12, मोइन अली 5, जॉनी बेरेस्टो 15 और बेन स्टोक्स 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट चुके हैं। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 19 रन देकर 3 और जयंत यादव ने 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। पारी की हार से बचने के लिए इंग्लैंड को अभी भी 56 रनों की जरूरत है और उसके 6 विकेट बाकी है। इससे पहले भारत ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 271 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पहली पारी 417 रनों पर समाप्त हुई। कल 57 रन बनाकर खेल रहे आर अश्विन आज 72 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर जोस बटलर के हाथों कैच हुए, जबकि कल 31 रन बनाकर नाबाद रहने वाले रविंद्र जडेजा आज 90 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्रिस वोक्स के हाथों कैच हुए। इसके बाद जयंत यादव ने अपना जलवा दिखाया और वो अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में अपना पहला अर्धशतक जमाने में कामयाब रहे। उन्होंने 55 रन बनाए। उमेश यादव 12 रन बनाकर आउट हुए जबकि मोहम्मद शमी 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 73 रन देकर 5 और आदिल रशीद ने 118 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। आज के दिन का खेल समाप्त होने के बाद रविंद्र जडेजा ने माना कि खुद उनकी, आर अश्विन और जयंत यादव की बल्लेबाजी से मैच पर फर्क पड़ा।
जयंत ने, अश्विन ने और मैंने तीनों ने मिलके बात कर करके इनिंग बिल्डअप किया और अच्छा स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया और अभी भी वो लोग 70 रन पीछे है और उनके 4 विकेट आउट हो गए। मुश्किल था मेरे ख्याल से, जितना फर्स्ट इनिंग में विकेट होना चाहिए वैसा था नहीं।
उधर हैमिल्टन में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज खेल के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 313 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 369 रनों का लक्ष्य रखा। आज के दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान का स्कोर दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 1 रन था। आज न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अपने टेस्ट करियर का 16वां शतक जमाते हुए नाबाद 102 रन बनाए। लेकिन टेनिस के कोर्ट पर अर्जेंटीना ने बड़ा कारनामा करते हुए पूर्व चैंपियन क्रोएशिया को 3-2 से हरा कर पहली बार डेविस कप अपने नाम किया। अर्जेंटीना की जीत में फेडरिको डेलबोनिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निर्णायक मैच में इवो कार्लोविच को 6-3, 6-4, 6-2 से हरा कर अर्जेंटीना को 15वां ऐसा देश बनाया जो डेविस कप का चैंपियन बना।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश गुप्त और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के विपक्षी दलों ने आज देश भर में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किए। इस दौरान वामपंथी दलों की ओर से की गई बंद की अपील का आंशिक असर ही दिखा। सीरिया के अलेपो से मिली खबरों के मुताबिक सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेपो के बड़े हिस्से पर अधिकार हासिल कर लिया है। जलपोत में लदे सिंगापुर के सैन्य वाहनों को हांगकांग में जब्त किए जाने के मामले में चीन ने सिंगापुर के समक्ष औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। बांग्लादेश सीमा पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रवासी रोहिंग्या मुसलमानों से भरी 8 नावों को वापस कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।